9 बाण उसने नल के ऊपर छोड़े, 7 बाण उन्होंने मैंद के ऊपर छोड़े, 5 बाण गज के ऊपर छोड़े, जामवंत के ऊपर 10 बाण छोड़े, नील के ऊपर 30 बाण छोड़े, सुग्रीव और ऋषभ के ऊपर और अंगद के ऊपर, दिवित के ऊपर, इनके ऊपर भी 30-30 बाण छोड़े, और भी राक्षसों के ऊपर खूब बाण छोड़े। इतने बाण छोड़े कि सब के सब एकदम निष्प्राण से होकर के गिर गए। निष्प्राण सा होकर के माने अब कोई चेष्टा नहीं, केवल थोड़ा थोड़ा सांस आ रहा था उनको। घड़ी दो घड़ी में समाप्त होने वाले से हो, ऐसे भी वहां पर उनको दिखाई दिए। जोर से वो जो है क्रुद्ध होकर के चिल्लाने लगा, कालाग्नि में मूर्छित, कालाग्नि के समान मूर्छित हुआ वहां पर बांदरों को मसलने लगा। बांदरों की सेना उसकी बाण वर्षा से बहुत ही क्षत विक्षत होकर के और इधर उधर बिचारी भागने लगी, और वो विजय के अंदर उन्मत्त हुआ हुआ मेघनाथ वह बाणों की खूब वर्षा करके, शस्त्र वर्षण से दारुणम, खूब शस्त्र की वर्षा की, और जो बांदरी सेना थी सारी बांदरी सेना के ऊपर उसने बड़ा भयंकर आतंक मचा दिया। स्वसैन्य मुत्सृज्य समेत्य तूर्णम महाहवे वानर वाहिनीषु अदृश्यमान सर्जालम उग्रम बबर्ष नीलांबु धरो यथांबु। भाई वे बरसात आती है तब एक बूंद के बाद दूसरी बूंद जैसे तड़ 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 पड़ती रहती है, उसी प्रकार से वह मेघनाद अदृश्य होकर के अपनी सेना को छोड़ दिया और अदृश्य हो गया। अदृश्य होकर के बांदरी सेना के बीच में चला गया और वहां बरसात के समान वो बाण पर बाण बांदरों पर छोड़ने लगा। उस समय में वह बाण के द्वारा बांदरों के शरीर को विदीर्ण कर रहा था। ऐसी माया फैलाई कि बानर तो वहां घबरा गए, और बानर विस्वरम उन्नदंत है, वे खराब स्वर के अंदर चिल्लाने लगे। मतलब अच्छा स्वर भी होता है क्या चिल्लाने के लिए? हाँ होता है। एक तो विजय के अंदर चिल्लाना होता है, वो स्वर देखो कितना भरावा होता है, और एक हार के अंदर चिल्लाना होता है, वो होता है कर्राना। ऐसे कठोर शब्दों से वो चिल्लाने लगे कि उसे स्पष्ट मालूम दे रहा था कि बांदरी सेना बिल्कुल भयभीत हो रही है और हार रही है। बड़े बड़े पर्वतों के समान ऊंचे ऊंचे महान बंदर इधर उधर भागने लग गए। मेघनाद के द्वारा मारे हुए सब के सब बंदर ऐसे लगे जैसे कोई पर्वत है वो इंद्र के द्वारा पिटे हुए अपनी जगह छोड़ रहे हैं। इन बाणों के द्वारा उसने बड़ी विचित्र शक्ति दिखाई। अब क्या करें, वो तो छिप गया, उसको कोई देखे तो, अब कोई मारे तो कहां मारे उसके बाण। वो छिपा हुआ बाण मारता है, माया के द्वारा उसने अपने आप को छिपा लिया और जगह उसको कहीं मिली नहीं। नचात्र तम राक्ष समाप्त देव बांदरों की जगह नहीं मिली छिपने के लिए, और वो जो है छिपा हुआ ऐसा है कि उनके बीच में ही छिपा हुआ अदृश्य हो गया। वो तो माया में छिपा हुआ बांदर कहां जाए बेचारे, वो तो सामने दिखे। वो मेघनाद उस समय में अपने बाणों को लेकर के इस प्रकार से बांदरी सेना को आच्छादित कर दिया, जैसे मेघों से पृथ्वी जब आच्छादित होती है तो सूर्य का प्रकाश उसको दिखना बंद हो जाता है, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता। इस प्रकार से भाई बांदरों इस सेना के ऊपर उसने आक्रमण किया, शूलों से आक्रमण किया, परसों से आक्रमण किया, कई ऐसे ऐसे शस्त्रों से आक्रमण किया। बिचारी बांदरी सेना घबरा गई। ताड़िता शक्रजित बाणी प्रफुल्ला एवं किंसुका, जैसे वृक्षों के ऊपर फूल आते हो, फूल लगे हुए वृक्ष कितने अच्छे लगते हैं, ऐसे बांदरों के शरीरों के ऊपर खूब बाणी बाण बाणी बाण उनके ऊपर दिखाई देते हैं। ऐसे लगते हैं जैसे मानो कोई बड़े बड़े वृक्षों के ऊपर फूल लग गया है, क्योंकि वो बाण भी तो ज्वलनशील थे। वे बानर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, एक दूसरे का सहारा लेते हुए, जोर जोर से चिल्लाते हुए, बचाओ भाई, अब कोई इधर सेना हो तो हमको बचाओ हमको बचाओ, ऐसे बिचारी बचाने बचाने की आवाज करने वाली सेना बांदरी सेना इधर उधर भागने लगी। भागते हुए पर भी खूब बाणों की उसने वर्षा की। शरीर विभिषुर अन्योन्यम पेतुश्च जगती तले, कई कई बंदर बिचारे ऊपर उठते तो धड़ाम से नीचे गिर जाते। अब शरीर में भाई लगा हुआ है बाण और फिर वो जमीन पर गिरे, कितनी चोट पहुंचती है। हनुमान जी सुग्रीव अंगद गंधमादन मैंद द्विविध नील गवाक्ष गवय केसरी हरिलोमा विद्वत्दंष्ट सूर्यानंद ज्योतिर्मुख ददिमुख, ये सब के सब नल कुमुद ये सारे बानर वहाँ कई शस्त्रों से बिचारे घायल हो गए। कोई प्रासों से, कोई शूलों से, कोई तीखे बाणों से, क्योंकि वो इंद्रजीत मेघनाथ अभिमंत्रित बाणों को। तो वह मंत्र बोल बोल करके उन बाणों को फेंक रहा था, तो सब घायल हुए वे पड़े थे, कर्रा रहे थे। इस प्रकार से वह गदाओं को लेकर के और दूसरे शस्त्रों को लेकर के जब बांदरी सेना को इस प्रकार से घायल कर दिया, तो अब राम और लक्ष्मण की तरफ आया। राम और लक्ष्मण को उसने बड़े गौर से देखा, देखते ही उसने बाणों की वर्षा चालू कर दी। जब राम और लक्ष्मण पर खूब बाण बरसने लगे, उस समय में भगवान श्री राम और लक्ष्मण सोचे क्या करें, शस्त्र तो इसके सामने कहां चलाएं, दिखता तो हमको है नहीं, ये यद्यपि बिल्कुल पास में हो तब भी ना दिखे, दूर हो तब भी ना दिखे, तब क्या करें। तब राम जी महाराज ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण युद्ध के अंदर एक नीति है कि जिस समय शत्रु प्रबल हो उस समय शत्रु के सामने अपने को निर्बल हो जाना चाहिए। देखो लक्ष्मण, इसका निशाना बांदरी सेना तो है ही, साथ में खास निशाना तुम और हम दो हैं, और इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ रखा है। इस समय में ब्रह्मास्त्र का, यद्यपि अपने लोग ब्रह्मास्त्र का आप प्रतिकार कर सकते हैं, पर यह प्रतिकार हमारा चलने वाला नहीं है, क्योंकि यह बड़ी शक्ति से संपन्न है। ये हमारी ओर बाण फेंक रहा है, हमारे शरीर में लग रहा है, ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया है, इसीलिए छिप छिप करके बाण लगाता है। यदि ये स्वयं शक्ति संपन्न हो तो ये हमारे सामने क्यों नहीं आता, परंतु हमारे सामने नहीं आता है। हमारे सामने आने पर तो ये हमारे शस्त्रों से डरता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के बाद ये अदृश्य होकर हम पर जो शस्त्रों का प्रहार कर रहा है हमको सह लेना चाहिए। लक्ष्मण ये क्रोध करने का अवसर नहीं है, ये शांति का एक अस्त्र है, अर्थात शत्रु हमारे पर आक्रमण कर रहा है हम शांत रहें, ये भी एक अस्त्र है। जब हमारे पर खूब बाणों की वर्षा हो जाएगी उस समय ये यहां से स्वयं ही चला जाएगा, और ब्रह्मा जी के शस्त्र की हमें रक्षा भी तो करनी चाहिए। ब्रह्मा जी का हमारे साथ बड़ा गहरा संबंध है, इस युद्ध में ब्रह्मा जी भी तो हमारी विजय चाहते हैं, अतएव बिना किसी व्यग्रता के सहस्व इन बाणों को तुम सहलो, एक बाण भी प्रतिकार में मत छोड़ो। और ये राक्षसराज जब चारों तरफ अपने को बाणों ही बाणों से आच्छादित कर देगा, तब ये दूसरे बाण हमारे पर नहीं लगा पाएगा, और अपने जानबूझ करके भी एकदम घायल होके पड़ जाओ, शस्त्र मत चलाओ। और फिर उसके बाद रावण पुत्र अपने आप स्वतः ही लंका की तरफ चला जाएगा। ध्रुवम प्रवेक्षत त्यमरा रिवासम असौ समासाद रणाग्र लक्ष्मी, और ये अपने विजयोल्लास में कि आज मैंने सबको हरा दिया, मेरे सामने कोई युद्ध के लिए डट नहीं सका, ऐसे चिल्लाता चिल्लाता विजय के उन्माद में ये लंका में चला जाएगा। लंका में जब चला जाएगा तो युद्ध भूमि छोड़ने के बाद फिर इसकी अदृश्य शक्ति वहीं समाप्त हो जाती है। फिर तो नए ढंग से यज्ञ करे, नए ढंग से वो शक्ति प्राप्त करे तब होगा, नहीं तो लंका की तरफ चला गया, युद्ध भूमि छोड़ दिया तो अदर्शन होने की शक्ति समाप्त हो गई। अब राम और लक्ष्मण दोनों समझ गए इस बात को, वो इशारा करके, और राम ये बाण आता है तुम देखो किस प्रकार से तुम इस बाण से नहीं गिरते हो, ऐसे बाण छोड़ता गया, बाण बाण खूब बाण छोड़ दिए। राम जी महाराज गिर गए, लक्ष्मण जी भी गिर गए, दोनों के दोनों गिर गए। और वो बड़ा जोर से अट्टहास करके हम जीत गए, आज हमारे सामने कोई नहीं रहा, ऐसे जोर से अट्टहास करता हुआ लंका की ओर चला गया। और वहां जाकर उसने अपने पिताजी से कहा, महाराज प्रफुल्लित होइए, मेरे चेहरे को देखकर आपका चेहरे का रंग अब बदल जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं राम और लक्ष्मण को सारी बांदरी सेना को परास्त करके हरा करके आया हूं। इस प्रकार से उसने अपने मुंह से बड़ी प्रशंसा की, हर्षित हुआ। इधर भाई जब राम और लक्ष्मण बेहोश होकर के गिर गए, सच में वो बेहोश हो गए, तब उस समय सारी बांदरी सेना के अंदर बड़ी हलचल हो गई। सुग्रीव है, नील है, अंगद है, जामवंत है, ये भी तो बेहोश हुए हुए पड़े हैं, सब बेहोश पड़े हैं। अब ये छुटपुटिया जो बंदर हैं, वो बंदर देखा अपने क्या करें, जब बड़े बड़े बंदरों की दशा हो हम कर भी क्या सकते हैं, तो भी बेचारे छोटे छोटे बंदर इकट्ठे होकर के राम और लक्ष्मण के चारों तरफ बैठे हैं। कुछ बंदर सुग्रीव, नील, जामवंत को घेरे बैठे हैं, कुछ बंदर जो जो घायल हुए उन सब की रक्षा में और उनकी सेवा में बैठे हुए हैं। इधर विभीषण जी महाराज जो बुद्धि में बड़े श्रेष्ठ हैं, वे घूमते घूमते आए और उन्होंने देखा कि बांदरों की सेना तो भाई हारी हुई है, बांदरों की सेना का उत्साह खत्म हो गया है। अतः उन्होंने बांदरी सेना को आश्वासन दिया, आश्वासन अब क्या आश्वासन, यही कहा देखो युद्ध के अंदर सबकी एक साथ विजय नहीं होती है, कभी पराजय होती है कभी जय होती है, कभी पराजय होती है कभी जय होती है, हमने शत्रु सेना के बहुत कुछ को तो मार दिया है। महाभिष्ट चिंता मत करो, शत्रु सेना के बहुत से योद्धा मारे गए हैं, और अभी जो राम और लक्ष्मण यहाँ इस प्रकार से बेहोश हुए हुए पड़े, इनको लेकर आप लोगों को कोई विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के सामने इनका इस प्रकार से व्यथित होना उचित है। स्वयं वो वाक्य मथुत बहनतो, ये तो केवल ब्रह्मा जी की बात का निर्वाह करने के लिए बेहोश हुए हुए पड़े हैं। मेघनाद ने इनके ऊपर जो अस्त्र जाल का प्रयोग किया है वो यही समझ के किया कि ब्रह्मास्त्र कभी व्यर्थ होगा नहीं, और राम जी ने ब्रह्मास्त्र का आदर किया है, ये अभी केवल बेहोश है, थोड़े घायल है, मरे नहीं है। ब्रह्मास्त्र को पहले ऐसे वरदान दिया ही है, ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया ही है, अतः ये क्या करे, ये ब्रह्मा जी के वरदान की भी तो देखने की बात है ना, तो को अत्र विषाद काल है, ये विषाद करने का समय नहीं है। आप लोग ब्रह्मास्त्र का मान समझने वाले राम और लक्ष्मण, इन दोनों को घायल अवस्था में देख करके घबराओ मत। तब जो है हनुमान जी महाराज, उन्होंने सुना कि राम जी पर ब्रह्मास्त्र लग गया, विभीषण जी के वचनों को सुनकर के वो कहने लगे, विभीषण जी ये सारी बांदरी सेना इस समय उखड़ रही है, ऐसा करो हमारी सेना तो प्राय करके बहुत सी नष्ट हो चुकी है, जो जो इस समय घायल हैं या जीवित हैं उनको कम से कम आश्वासन तो दो, उनको आश्वासन दो और उनको कहो कि भाई सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, ऐसे समझाओ, और जो घायल है बेचारे उनकी सेवा करें। तो ये हनुमान और विभीषण दोनों साथ साथ अपने हाथ में, रात्रि का समय था, उल्का लेकर के मशाल लेकर के गए, और मशाले लेकर के रात्रि के अंदर जो सेना मर गई थी वो तो मरी गई, लेकिन जो जीवित थे और घायल थे एक एक के पास गए, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी की अंगुलियां टूट गई, किसी की पूंछ टूट गई, किसी के छाती से खूब खून आ रहा है, किसी के माथे से खून आ रहा है, किसी के बगल से खून आ रहा है, ऐसे जगह जगह बाण लगे हुए, घायल हुए। और वो बंदर बेचारे ऐसे ऐसे वो कर्रा रहे हैं। उनके पास में हनुमान जी पहुंचे और ये विभीषण जी पहुंचे। दोनों ने जाकर उनको उनके जो है उनको धैर्य दिलाया और उन सब के लिए कहा कि देखो अब आप लोग चिंता मत करो, वो मेघनाथ तो लंका में चला गया है और जिनके शस्त्र गड़े हुए थे उन शस्त्रों को उन लोगों ने निकाला भी कि भाई अब शस्त्र लग गया, उसको पकड़ करके निकाल दिया। ऐसे उनको सांत्वना देते 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 सुग्रीव के पास पहुंचे, अंगद के पास पहुंचे, नील के पास पहुंचे, शरभ गंधमादन के पास पहुंचे, जामवंत के पास पहुंचे, सुसेन के पास पहुंचे, वेगदर्शी के पास पहुंचे। नील नल ज्योतिर्मुख विविध इन बांदरों के पास पहुंचे और एक एक के पास जाकर देखा तो देखो कैसा भयंकर बाण लगा है। कोई कहता है मेरी हड्डी टूट गई, कोई कहता है कि मेरे तो बाण है वो शरीर के अंदर बहुत गड़ गया। ऐसे उनको देखा तो उन सबको देखते देखते जो देखा कि अपने बंदर कितने मरे जरा ये तो बताओ कि भाई अब बंदर कितने मरे जरा बताते हो। सप्त षष्टि रहता कोट्य है, 67 करोड़ बांदर मारे गए उस दिन, 67 करोड़ इतने बांदर वहां पर मारे गए थे मेघनाथ के द्वारा। और रात्रि का थोड़ा सा समय बाकी है, विशाल बांदरों की सेना मरी पड़ी है वहां। उस समय में जामवंत जी को खोज रहे हैं हनुमान जी और विभीषण जी दोनों, जामवंत जी कहाँ है, जामवंत जी कहाँ है। तो जामवंत जी वो पड़े हुए यूं एकदम ऊंधे पड़े हुए बेचारे, बाण लगे हुए और मुंह फैला रखा है, बुढ़ा है। उसके पास में गए और जामवंत जी के पास गए, जामवंत जी हमारे योद्धाओं में सबसे बूढ़े तो आप ही हो, क्या आपके कोई तकलीफ तो नहीं है। क्वचिदारी सरेस्त्री न प्राणा ध्वंसिता स्तव। जामवंत जी आप यू पीठ की तरफ पड़े हो, पेट आपका यूं और आंखें यूं आकाश में टिमटिमा रही है, रात्रि में हमें पता चलता नहीं है आप जीवित तो हो ना। ऐसे हिला हिला के जामवंत जी, जामवंत जी जीवित हो तो थोड़ा बोलिए ना। जामवंत जी खूब घायल हो गए थे, अब घायल हुए बोलने लगे। जामवंत जी पूछने लगे कि भाई कौन बोलते हो, मैं आवाज पहचानता नहीं हूँ। महाराज मैं विभीषण बोलता हूँ। अच्छा अच्छा विभीषण, हाँ थोड़ा तुम्हारा स्वर से मालूम तो ऐसा ही दे रहा था, परंतु जगह जगह बाण लग गए, खून बह गया, होश आवाज कुछ कम है, इसलिए भाई तुमको पूरा देख नहीं सकता हूँ। विभीषण सेना में जाकर मालूम करो कि हनुमान जीवित है कि नहीं है। अंजना ने जिसको जन्म देकर के अपना मातृत्व सफल किया है उस हनुमान के विषय में तुम बताओ कि वो जीवित है कि नहीं। जामवंत जी की बात सुनकर विभीषण जी कहने लगे, हे आर्य पुत्र आप तो हमारी सेना में सबसे बूढ़े हैं, आपके लिए तो सब बानर एक जैसे हैं, आपके लिए सब बच्चे हैं, लेकिन आपने किसी को भी नहीं पूछा, आर्य पुत्र श्री राम और लक्ष्मण के विषय में नहीं पूछा, आपने केवल एक हनुमान के विषय में क्यों पूछा है, हनुमान के विषय में आपका इतना पक्षपात कैसे है। सुग्रीव के लिए नहीं पूछा, अंगद के लिए नहीं पूछा, दूसरे बांदरों के लिए नहीं पूछा, आपने केवल हनुमान के लिए पूछा, क्या बात है। विभीषण जी की बात सुनकर के जामवंत जी कहने लगे, हे राक्षस राज हनुमान के विषय में मैंने क्यों पूछा है जरा सुनाता हूँ। देखो हनुमान जीवित है तो हम सब मरे हुए भी जीवित हैं, और हनुमान यदि मर गया तो हम जीते जी सब मरे हुए हैं, ये तुम निश्चित बात समझो। विभीषण यदि हनुमान है तो हम सब हैं, क्योंकि हनुमान जैसा एक हनुमान ही है और दूसरा कोई नहीं है। बोलो मुझे बताओ, मैं तो खैर मर रहा हूँ, मरते मरते मुझे ये सुनने को मिलेगा कि हनुमान जीवित है तो इस वाक्य से ही मैं आनंदित होकर जी जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। जीवित आशा ततो भवेत, ये वायु के समान वेगवान और अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान, इसके ऊपर हमारे जीने की आशा टिकी हुई है। हनुमान जी महाराज रोते रोते जामवंत जी के पास आए। जामवंत जी, मैं तो विभीषण के पास में ही खड़ा था, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप हमारी सेना में सबसे बूढ़े हैं, आप तो समुद्र मंथन के समय में जवान थे, आप वामन अवतार के समय में बड़े जवान थे, इस समय आप बहुत बूढ़े, आपकी बड़ी उम्र हो गई। गई जाम बताए पादव हनुमान मारुत आत्मजय श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम तदा व्यव्यथितेन्द्रिय। तो उसके बाद हनुमान जी महाराज को जामवंत जी ने बड़े प्रेम से कहा, हाथ फेरते फेरते हो हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते, आगच्छ हरि शार्दूल, आओ आओ बेटा हनुमान, आओ तुम हो तो हम सब बंदर सब प्राणी बच गए, नान्यो विक्रम पर्याप्त स्वमेशम परम सखा, तुम इनके परम सखा हो, तुम इनके परम मित्र हो, सब बांदरों के तुम्हारे अलावा दूसरा कोई ऐसा पराक्रमी है नहीं। देखो बानर, तुम एक काम करो, बताओ महाराज, जामवंत जी बताइए मैं क्या सेवा करूं। हनुमान, तुम हम सबके प्राण बचा सकते हो, तुम एक काम करो, तुम जीवित हो तो सब काम कर सकते हो, तुम यदि इस समय अपना पूर्व पौरुष दिखाओ तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। बताइए जामवंत जी, मैं तो आपका बालक हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। देखो सब रींचों के बांदरों के सबके कार्य और श्री राम और लक्ष्मण का कार्य हो जाएगा, आज्ञा तो दीजिए। हनुमान, तुम यहाँ से आकाश में उड़ करके इस सागर को पार करके उत्तर की तरफ चले जाओ, वहाँ एक बहुत बड़ा पर्वत हिमालय है, उस हिमालय के ऊपर एक ऋषभ देव एक ऋषभ नाम का पर्वत है और एक उसके पास में कैलाश पर्वत है, ये दोनों पर्वत ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ तुम जाओ और उन पर्वतों के ऊपर जा करके वहाँ तुमको एक पर्वत और दिखाई देगा, छोटा पर्वत, जिस पर्वत के ऊपर कई प्रकार की औषधियाँ जगमगाती हुई तुमको दिखाई देंगी, वो जगबुज 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 करने वाली औषधियाँ, उन औषधियों को लेकर के तुम आओ, उसमें देखो चार प्रकार की औषधियाँ विशेषता से काम आएंगी, एक तो मृत संजीवनी नाम की औषध है वो ले आओ, एक विषली करनी है वो ले आओ, एक सुवर्ण करनी है और एक संधानी है, ये चार प्रकार की तुम औषधियां लेकर के आ जाओ, क्योंकि चार प्रकार की औषधियां उनके शिखर भाग में उगी हुई है। और हनुमान तुम जल्दी जाओ, देखो ये सब काम रात रात में हो जाएगा ना, तब तो दवाई काम करेगी, प्रातः काल हो जाएगा तब तो सूर्य के प्रकाश में तुमको जगमगाती हुई वो औषधियां दिखाई नहीं देंगी, दवाइयां तुमको दिखाई नहीं देगी, इसलिए अभी तुम जाओ और जब तक वो जगबूज होती रहती है तब तक तुम जाकर के ले आओ, जल्दी करो, तुम्हारे ऊपर हमारा सारा भार रखा हुआ है। इस प्रकार से आश्वासन देकर के और हनुमान जी महाराज को विदा किया। हनुमान जी महाराज ने कहा कि ठीक है महाराज, आंखों में आंसू आ गए, इतनी विशाल बांधवी सेना को घायल में देखा, हनुमान जी का जोश चढ़ गया, जामवंत जी के बातों को सुनकर के हनुमान जी महाराज जोर से छलांग लगा करके लंका के एक छोटे से पर्वत पर गए और उस पर्वत पर जाकर हनुमान जी महाराज को जल्दी हो रही थी ना, इसलिए वे हनुमान जी पर्वत के ऊपर यूं پیر رکھ کے مضبوطی کے ساتھ اوپر اڑنا چاہتے تھے، اتنے میں تو وہ پروت ڈر 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 بکھر گیا، ہنومان جی کے ویگ کو سہ نہیں سکا اور وہ پروت ایک دم دھسک گیا۔ ہنومان جی مہاراج نے دیکھا کہ اب کیا کریں، تب وہ ہنومان جی مہاراج وہاں سے چھلانگ لگا کر کے ایک دوسرا اور پروت تھا ملے پروت، اس ملے پروت پر گئے۔ تو جس سمے ہنومان جی مہاراج یوں پروت کے اوپر چڑھے اور پروت وہ ڈھہنے لگا نا، تو لنکا یوں 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 ہونے لگی جیسے کوئی راتری کے اندر لنکا مدیرا پی کر کے ناچ رہی ہو، ایسی وہ لنکا دکھ رہی تھی۔ اور جس سمے میں ہنومان جی مہاراج نے یوں اس کو پیڑت کیا، پروت کو زور لگایا اس پر، وہ پروت میں پروت کا کشوبھ ہے وہ پرتھوی کشوبھ ہونے لگی، پرتھوی ڈگمگانے لگ گئی، مانے پروت کا کشوبھ پرتھوی میں چلا گیا اور پرتھوی کا کشوبھ ساگر میں چلا گیا۔ اب ملے پروت پر چلے گئے۔ ملے پروت پر جانے کے بعد ایسا لگا کہ اس پروت کے اوپر کوئی پروت آ گیا ہو۔ ہنومان جی مہاراج اس سمے میں دھیان سے سننا ہو، یوں آکاش کی طرف یوں دیکھے، بڑا کروھ تھا، کروھ میں ہنومان جی بڑھنے لگے بڑھنے لگے بڑھنے لگے اور بڑھ کر کے ہنومان جی بہت اونچے ہو گئے۔ بہت اونچے ہو کر کے ہنومان جی نے زور سے چھلانگ لگائی، چھلانگ لگا کر کے سیدھے ہنومان جی آکاش میں کتنے گئے ہو، 240 کوس اوپر چلے گئے۔ ششٹ یوجنم اچھتم، 60 یوجن اونچے گئے۔ 60 یوجن مانے 4 کوس کا ایک یوجن ہوتا ہے، تو 240 کوس چلے گئے اوپر۔ اوپر گئے تو ودیادھر رشی منی سب ڈرے ہوئے سے رہے، یوں کہ ہنومان بھائی اس کا ویگ کہیں پر جو ہے ہم کو ادھر ادھر گرا نہ دے، پٹک نہ دے۔ یکش گندھرو کنر سب گھبرا گئے۔ اور جس سمے ہنومان جی مہاراج وہاں زور سے کلکاری لگائے تھے، سارے راکشس ڈر گئے گی آکرمن ہونے والا ہے۔ ہنومان جی مہاراج نے تو کلکاری لی اور وہ جو ہے راکشس لوگ ڈرنے لگ گئے۔ ہنومان جی مہاراج اوپر پھد گئے تو ہنومان جی کا جو وایو کا جھونکا آیا، جس جھونکے سے کئی پروت شکھر ہے وہ ڈھہنے لگے اور ورکش تھے وہ دھڑام سے گرنے لگے۔ دیکھو ویگ سے کوئی چیز آتی ہے تو ہوا اڑتی ہے، آپ کے پاس میں سے کوئی موٹر جائے زور سے ایک دم ہوا آئے گی زور سے، ویگ کا سامنا کرنے والی وایو طاقت لگا کے ادھر آتی ہے۔ تو ہنومان جی کے ویگ کے دوارا لنکا میں رہنے والے راکشس تھے، وہ راکشس تو گر گئے، جو جہاں تھے وہ جیسے زور سے وایو آئے گر گئے ہو، ارے کس نے پٹک دیا پتا نہیں، ورکش دھڑا دھڑ گرنے لگ گئے، کس نے گرا دیا کوئی پتا نہیں۔ ہنومان جی مہاراج نے رام جی کو اوپر سے نمسکار کر لیا، نمسکار کر کے وہ چلے جا رہے، اپنے پونچھ کو اونچا کر لیا اور اونچے کر کے اس پونچھ کو یوں یوں گھما رہے ہیں۔ دیکھو یوں ہی نہیں گھما رہے ہیں، جیسے گاڑی چلاتے ہیں تو اسٹیئرنگ گھماتے ہیں تو گاڑی کا بیلنس رہتا ہے، یوں یوں گھماتے ہیں گاڑی کو اسٹیئرنگ کو گول گول چکرے کو، ایسے ہنومان جی مہاراج اس پونچھ کو یوں کراتے تو ان کا شریر کا بیلنس برابر رہتا ہے، پونچھ یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں ہوتی رہتی ہے۔ تو ایسے ہنومان جی مہاراج بڑھتے چلے گئے۔ سپچھ مدیم میں بھجنگ کلپم ونم میں پرشٹم شرونے نکچے، اور یوں اپنے شریر کو یوں تھوڑا چھوٹا کر لیا، ہاتھ وغیرہ یوں آگے کر لیے، بڑے ویگ سے چلے جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے آکاش کے پرانیوں نے بڑے آشچری کے ساتھ ہنومان جی کو دیکھا، اور وہ چلتے چلتے ہنومان جی مہاراج ساگر کو پار کر کے اور آگے کے دیشوں کو پار کرتے کرتے ایسے جا رہے ہیں جیسے بھگوان وشنو کا سنسناتا ہوا کوئی باند جاتا ہو، رکتا نہیں ہو، ایسے ہنومان جی چلے جا رہے ہیں۔ کئی ان کے نیچے نگر آئے، ندیاں آئی، تالاب آئے، ورکش آئے اور سب آئے، ان سب کو پار کرتے کرتے اپنے پتا وایو دیوتا کے سمان سوری کے رستے سے چلتے چلتے بڑے ویگ کے ساتھ ہنومان جی مہاراج زور سے شبد کرتے ہوئے ہمالے پر جا کر ٹھاپ جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ ہنومان جی مہاراج ہمالے پر جا کر کھڑے ہوئے، اب ہمالے تو بہت بڑا تھا نا، ہمالے کا کیا ہوتا، ہنومان جی جا کر وہاں کھڑے ہو گئے۔ अब जाकर के उन पर्वतों की तरफ गए जो कैलाश पर्वत बताया था और ऋषभ पर्वत बताया था, दोनों पर्वतों के वहां गए। अब देखा कि वहां तो बहुत झरने हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, और जामवंत जी ने बताया था उस रास्ते चल रहे हैं, अभी पर्वतों के पास में नहीं आए उनके, अभी हिमालय को देख रहे हैं, अभी तो इतने झरने चलते हैं यहाँ, इतनी कंदराएं हैं, और सफेद बादल तो हिमालय के ऊपर रहते ही हैं, चंदन के अच्छे अच्छे वृक्ष हैं यहाँ, बड़े अच्छे औषधियां भी हैं, लताएं भी हैं, इन सबको देखा हनुमान जी महाराज ने, बड़े अच्छे अच्छे संतों के महापुरुषों के आश्रम थे, उन आश्रमों को देखा, और देवताओं का वहां पर आना जाना होता था वो देखा। अरे यहाँ ब्रह्मा जी आकर बैठा करते हैं, और ये ब्रह्मकोश है, ये रजतालयम, ये देखो चांदी का बना हुआ स्थान है, लोक है, यहाँ पर शक्र आकर के, इंद्र आकर के कभी बैठते हैं, जब इंद्र को स्वर्ग से आना होता है तो आकर के यहाँ बैठते हैं, और ये हाँ ये शंकर भगवान का वो स्थान है जहाँ खड़े होकर शंकर भगवान ने त्रिपुरासुर को मारा था, यहाँ खड़े हुए थे ये रुद्र सरप प्रमोक्षम, शंकर के बाण छोड़ने की जगह है। औ ये हयाननम, हयग्रीव अवतार में भगवान यहाँ खड़े होकर के और ब्रह्मा जी के लिए वेद लाने के लिए गए थे। ये ब्रह्म शिरा स्थान है, ये वैवस्वत का स्थान है, मनु यमराज का स्थान है, और ये किंकरों का स्थान है, ये अग्नि का स्थान है, ये वैष्णवों का स्थान है, माने वैष्णवण माने कुबेर, कुबेर की जगह है, कैसी देखो सूर्य के समान कांति वाली है, ये सूर्य निबंधन की जगह है, और ये ब्रह्मा जी का अपना स्वयं का स्थान है।